नमस्कार भारत, 21 नवंबर सोमवार, मैं हूं निखिल रंजन। कानपुर हादसे में मरने वालों की तादाद 128 तक पहुंची। रात भर जारी रहा बचाव और राहत अभियान। जिंदा बचे यात्रियों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची पटना। लोगों के मन में बना हुआ है दुर्घटना का डर। रेल मंत्री ने जताई पटरी टूटने की आशंका।
ये रेल फ्रैक्चर कैसे हुआ है या और भी कुछ हो सकता है, ये जांच के बाद ही हम बता पाएंगे। इतना निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कठोरतम कार्रवाई हम करेंगे।
राज्यसभा में आज होगी नोटबंदी पर बहस। सरकार ने कहा विपक्षी दल लगा रहे हैं चर्चा में अड़ंगा।
इसलिए दूसरे दिन वो अलग तरह के अलग अलग बहाने की जेपीसी बनाओ, फिर दूसरा प्रधानमंत्री जी आए वो तभी हम चर्चा शुरू करेंगे, तमाम तरह के बहाने करते रहे। उसमें खुद वो अपनी चतुराई के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस गए।
अखबारों की समीक्षा के साथ होगी वसतुल्ला खां की डायरी भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। रविवार तड़के कानपुर से 60 किलोमीटर दूर हुए रेल हादसे में मरने वालों की संख्या 128 तक पहुंच गई है। मृतकों और घायलों पर नजर रख रहे सरकारी डॉक्टर राकेश यादव ने 128 लोगों के मरने की पुष्टि की है। हादसे में पटना इंदौर इंटरसिटी रेलगाड़ी के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। ट्रेन इंदौर से पटना जा रही थी जब करीब पोखराया में यह हादसा हुआ। हादसे के कारण ट्रेन के 4 स्लीपर डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। आशंका जताई जा रही है कि इन डिब्बों में अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल चौथी बार चांसलर बनने के लिए अगले साल चुनावी मैदान में उतरेंगी। कई महीनों से चली आ रही अटकलों को विराम देते हुए उन्होंने क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी को संबोधित करते हुए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में समाज ध्रुवीकरण के दौर से गुजर रहा है और उनके लिए यह चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रवासी संकट और ब्रेक्सिट के मुद्दे उनके लिए कड़ी परीक्षा साबित हो सकते हैं। ब्रिटिश टेनिस स्टार एंडी मरे ने एटीपी वर्ल्ड टूर का फाइनल जीतकर टेनिस की नंबर वन रैंकिंग पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। लंदन में हुए फाइनल मुकाबले में एंडी मरे ने नोवाक जोकोविच को हराया। इसी महीने की शुरुआत में जोकोविच को हराकर ही उन्होंने पहली बार नंबर वन की रैंकिंग हासिल की थी। अब वो इस साल के आखिर तक नंबर वन पर काबिज रह सकते हैं। मैच के बाद एंडी मरे ने कहा,
you know, we played Grand Slam finals, Olympics, obviously, and then matches like this.
नोवाक के साथ इस तरह खेलना, आप जानते हैं हमने पहले ग्रैंड स्लैम फाइनल में खेला है, ओलंपिक में भी खेला है, और उसके बाद इस तरह का मैच, यह कड़ा मुकाबला था। मैंने उनके खिलाफ खेलते हुए कई मैच हारे हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि मुझे आज एक जीत मिली और इस साल के खत्म होने तक दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी बनूंगा। इस बारे में मैंने सोचा नहीं था। ये लम्हा मेरे लिए बेहद खास है। ये थे टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ईरान के परमाणु प्राधिकरण का कहना है कि उन्होंने ओमान के लिए अतिरिक्त भारी जल से भरा जहाज भेजा है जिसका इस्तेमाल प्लूटोनियम के उत्पादन में किया जा सकता है। इसके साथ ही ईरान ने परमाणु समझौते का उल्लंघन किया है जिसके अंतर्गत उसे तय मात्रा यानी 130 टन भारी जल का उत्पादन करना था। परमाणु मामलों पर नजर रखने वाली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है कि ईरान ने दूसरी बार तय मात्रा से ज्यादा भारी जल बनाया है। पेरू में चल रही एपेक देशों की सम्मेलन के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। व्हाइट हाउस ने बताया कि ओबामा ने पुतिन से अपील की कि वे सीरिया में जारी हिंसा को रोकने की कोशिश करें। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, सोमवार सुबह बीबीसी रेडियो की पहली सभा में आपका स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, कानपुर में रेल हादसे को 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वहां राहत और बचाव का काम जारी है। इंदौर से शनिवार दोपहर 2 बजे चली ट्रेन को अगले दिन पटना पहुंचना था। आधी रात को जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब अचानक इंदौर पटना एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए, एक दूसरे से टकराए। डिब्बों में 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। अब तक 128 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है, जबकि 300 से ज़्यादा घायल हैं। हादसे की चपेट में आए रेल के डिब्बों को काटकर शवों को निकाला जा रहा है। कई लोग हैं जो अब भी व्याकुल होकर अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। जख्मी लोगों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। हाल के वर्षों में सबसे बड़ा बताए जा रहे इस हादसे ने लोगों को डरा दिया है। वात्सल्य राय से सुनिए कि हादसे के बाद कल पूरे दिन क्या हुआ।
बहुत ही दर्दनाक मंजर था, हर जगह हाहाकार था, सब लोग सहायता के लिए चिल्ला रहे थे।
ये है राकेश कुमार गुप्ता। इंदौर से लखनऊ जा रहे राकेश गुप्ता कानपुर के करीब पटरी से उतरी इंदौर पटना एक्सप्रेस में सवार थे। हादसे को याद करते हुए वो कहते हैं,
3 से 3:15 बजे के आसपास की घटना है, बोगियां जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई।
हर तरफ चीख पुकार, रोते सुबकते, सहायता के लिए पुकारते लोग। ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान स्लीपर क्लास के 3 डिब्बों में हुआ। एसी कोच B3 में भी काफी नुकसान हुआ। राकेश गुप्ता बताते हैं,
उस समय मैं खुद ही कमर से नीचे दबा हुआ था और फिर वहाँ पे जो भी थे स्लीपर वगैरह में और जो लोग बचे थे वो लोग आ गए थे, गांव के लोग आ गए। 4 बजे के आसपास हमें एम्बुलेंस दिखाई देने लगे थे।
सुबह निकलने के साथ राहत काम में तेजी आई। NDRF की टीमों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। NDRF के कमांडर आलोक कुमार सिंह,
2 एयरलिफ्ट हुई गाजियाबाद से, 2 बनारस, 1 लखनऊ से टीम आई। टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। हमने 55 लाइव विक्टिम निकाले, आउट ऑफ 119 61 बॉडीज निकाली है।
इस बीच स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। कानपुर देहात के CMO डॉक्टर RP यादव,
जैसे सूचना फ्रेश आउट हुई तो एम्बुलेंसेज पहुंच गई और हम डॉक्टर्स की टीम और सारे लोग पहुंच गए। करीब 100 एम्बुलेंस से ऊपर वहां मौके पर मौजूद थी। जो लोकल वहां पे फर्स्ट एड देके बहुत से लोगों को सड़क तक पहुंचाया गया। कोई बहुत सीरियस कंडीशन में नहीं है।
राहत काम का जायजा लेने के लिए रेलवे के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। शुरुआत में सभी दलों के नेताओं ने सावधानी से बयान दिए। हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा की रैली से संवेदना जाहिर की।
जिन जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन सब के प्रति मेरी संवेदना प्रकट करता हूं, मृतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं।
प्रधानमंत्री मोदी की रैली खत्म होने के थोड़ी देर बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर तीखी प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा,
संवेदनशील राजनीति का एक पक्ष होता है कि खास करके इसे दुखद मौके पर आप कम से कम कुछ घंटों के लिए राजनीति को त्याग दीजिए।
राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया कि बुलेट ट्रेन पर 1,00,000 करोड़ रुपए निवेश करने के बजाय मोदी सरकार को पहले सुरक्षा और संरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इस बीच हादसे की चपेट में आए लोगों की तलाश भी जारी थी, लेकिन हर खबर राहत देने वाली नहीं थी। इंदौर पटना एक्सप्रेस में सवार रहे अमित कुमार के नंबर पर फोन करने पर उनके एक मित्र से बात हुई।
अमित जी इस दुनिया में नहीं है इत्तेफाक से इस समय। उनका कल एक हुए की और वाइफ दोनों सुरक्षित हैं। वाइफ उनकी कानपुर में हैदराबाद में है।
वहीं दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जुटने की वजह से राहत काम में दिक्कतें आईं। देर रात तक बोगियों को काटकर अंदर फंसे लोगों को निकालने के काम की निगरानी कर रहे NDRF के कमांडर आलोक कुमार सिंह ने कहा,
इतना ज्यादा क्रशिंग है कि बॉडीज अंदर भी है। एक S3 ऐसा कोच है जो उसके नीचे S2 क्रश हो रखा है, तो हम उसको क्लियर करना चाह रहे हैं।
उधर स्वास्थ्य विभाग ने शवों का पोस्टमार्टम कर उन्हें परिजनों को सौंपने का काम शुरू कर दिया, लेकिन कुछ शव इस कदर क्षत विक्षत हो चुके थे कि उनकी पहचान मुश्किल है। स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग अस्पतालों में दाखिल 96 घायलों के उपचार के लिए खास इंतजाम किए हैं। रेलवे की प्राथमिकता रेल मार्ग को सुचारू करने की है, लेकिन इस बीच हादसे की जगह पर हवाओं में दर्द की जो कहानियां शामिल हो गई हैं, वो शायद अरसे तक माहौल को सामान्य नहीं होने देंगी।
रिपोर्ट सुना रहे थे वात्सल्य राय। जैसा कि आपने सुना कि पूरी रात बचाव और राहत का अभियान जारी रहा, साथ ही शवों के पोस्टमार्टम करने और उन्हें सुरक्षित तरीके से उन लोगों के शहर भिजवाने का काम भी चल रहा है। ताज़ा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय पत्रकार रोहित घोष के पास। रोहित, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ये बताइए कि इस वक्त वहाँ घटनास्थल पर क्या कुछ हो रहा है?
देखिए, यहाँ पे राहत कार्य तो अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी जो है मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के बचे होने या मतलब निकलने की उम्मीद कम ही है। और अभी जो मतलब मेन जो काम है वो अस्पताल में भर्ती जो घायल लोग हैं उनको बचाना मेन एक उद्देश्य बन रहा है, क्योंकि कल से अभी तक जो है करीब 20 लोगों की अस्पताल में मौत हो चुकी है जिनका इलाज चल रहा था। तो अभी वो जो है प्रायोरिटी वाला काम हो गया है।
क्या और भी ऐसे घायल हैं जिनकी स्थिति बहुत गंभीर है रोहित?
हाँ हाँ, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे घायल हैं जिनकी स्थिति गंभीर है, उनका इलाज चल रहा है। और उनकी निगरानी उनके ऊपर मतलब इलाज चल रहा है उनका।
जो सामान्य लोग हैं जिन्हें ज्यादा चोट नहीं आई थी या हल्की फुल्की चोट आई थी, क्या वो सारे लोग अब कानपुर से या उस जगह से रवाना हो चुके हैं अपने अपने घरों के लिए?
हाँ हाँ, या तो रवाना हो चुके हैं या हो रहे हैं, धीरे धीरे जो जिनको कम चोट आई थी वो निकलने लगे हैं, अस्पताल छोड़ने लगे हैं।
जी रोहित, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और जैसा कि आपने सुना कि बहुत सारे लोगों को ट्रेनों में, दूसरी ट्रेनों में भर करके भेजा गया है उनके शहर में, तो पटना में एक ट्रेन जो है वो पूरी यात्रियों से भरी हुई पहुंची है अभी कुछ ही देर पहले। वहां पर उस वक्त हमारे सहयोगी नीरज सहाय मौजूद थे और वहां पर क्या कुछ हुआ सुनिए उन्हीं की जुबानी।
सुबह के 4 बज चुके हैं, जो स्पेशल ट्रेन पीड़ितों को पटना लेकर आने वाली थी वह अभी पहुंच चुकी है। काफ़ी तमाम लोग स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं। यहां जिला प्रशासन, रेल प्रशासन, आपदा प्रबंधन बल आदि के लोग भी यहां तमाम लोग जुटे हुए हैं। काफ़ी भीड़ है स्टेशन पर। 14 घंटे से अधिक की ट्रेन यात्रा कर यात्री पटना पहुंच गए हैं। अब वे इस घटना को याद करने में भी सिहर जा रहे हैं। लोगों के दिल दिमाग और बात करने से स्पष्ट हो रहा है कि इनमें दहशत अब भी कायम है।
माँ थी सर, मर गई कांति देवी सर। लेकिन एक बात है, हम लोग जिस रूट से चले ना, ऐसा भयानक हुआ सर, ऐसा भयानक कि शायद कोई कानपुर में अब जिसके साथ हुआ सर, वो शायद कानपुर की तरफ से कोई देखेगा भी नहीं। इतना बड़ा, इतना भयानक हादसा कि धरती पर भी हुआ ही नहीं। अब ये तो ऊपर वाला ही जान सकता है कि ये खेल कौन खेला है, ये वो ही बता सकता है। हम लोग का बस के बाद
S5 में थे सर, तो मेरी जो बोगी था ना, तो आधा जो है ना खेत में आ गया और आधा जो है ना पटरी पे था। तो मेरा सब क्या अचानक जो है ना, मेरे सब जो ऊपर पे था हड़ाहड़ जो है ना, पता चला कि जैसे भूकंप आ रहा है ना, उसे भूकंप का टाइप का सा आवाज हुआ है। वह
उज्जैन से निकली, इसके बाद भैंस कट गया, इसके बाद फिर आए यहाँ पे, तो कानपुर से 60 किलोमीटर पहले। ऐसे दो बोगी के तो पता ही नहीं चल रहा है कि नट बाल्टू कहाँ गया, चक्का कहाँ गया, बैरिंग कहाँ गया, क्या हुआ, पार्ट पुर्चा सारे अलग अलग। इतनी बुरी घटना कि हम लोग आने की समझिए कि मौत के कुएं से बच के आए हैं।
अच्छा ना, लिया जाए, लिया जाए।
अंजनी सिंह
कहाँ से आ रही है?
इंदौर से, इंदौर से आ रही
है। कहाँ जाना है?
दानापुर जाना है। अब तो रात का समय था, सो रहे थे हम लोग तो, लेकिन हम पलटी खाई तो उसका थोड़ा सा तो ये हुआ, झटका लगा, और उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं हुआ, हम लोग तो प्रोटेक्ट थे। ट्रेन मतलब आगे की 6S6 तक पूरा पलट गई है, और उसके बाद से बहुत सारे एक्सीडेंट। तो काफ़ी व्यवस्था अच्छी रखी प्रशासन ने, बहुत अच्छा व्यवस्था किया। वहाँ से हम लोग को कानपुर से बस, मतलब वहाँ से कानपुर बस से आए, फिर वहाँ से ट्रेन में सब सुविधा दी गई है पूरी सुविधा।
स्पेशल ट्रेन से जो भी यात्री पटना पहुंचे वे दहशत से भरे थे। उनमें से कुछ आंशिक रूप से घायल थे तो कुछ ने अपने परिजनों को भी खोया था। जो भी हो, इस भीषण हादसे ने यह साबित कर दिया है कि रेल परिचालन को दुरुस्त करने और यात्रियों को सुरक्षित सफर मुहैया कराने के लिए रेल प्रशासन को कई ठोस पहल करने की आवश्यकता है। नीरज सहाय, BBC पटना।
इंदौर पटना एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की वजह क्या है? हादसे के बाद किसी ने साजिश की बात की तो किसी ने लापरवाही का मुद्दा उठाया। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने हादसे के बाद मौके का मुआयना करने पहुंचे रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा से बात की और सबसे पहले पूछा कि हादसे की वजह को लेकर उन्हें अब तक क्या जानकारी मिली है।
हमारे लोको इंजन में जो इंस्पेक्टर था उसने दुर्घटना स्थल के पास जर्क की आवाज महसूस की थी और कुछ करता उसके पहले डिरेलमेंट हो गया, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि सैकड़ों लोग हताहत हुए। तो मुझे लगता है कि रेल फ्रैक्चर का केस है, ऐसा प्राइमा फेसी कहा जा सकता है। बाकी जांच का विषय है, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी को जांच के निर्देश दे दिए गए और मेंबर इंजीनियरिंग, मेंबर मैकेनिकल मौके पर गए थे। एक बार जांच की रिपोर्ट आए तो पूरे तथ्य सामने आएंगे, लेकिन जो भी हुआ है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि पूरी शिद्दत से और एक संवेदनशील सरकार के नाते हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। घायलों को शीघ्र राहत, उनके उचित उपचार का प्रबंध, मृतकों के परिजनों को कैसे हम सहायता पहुंचा सकते हैं ये देख रहे हैं। 3.5 लाख रुपया मृतकों के आश्रितों को और गंभीर रूप से घायलों को 50,000, सामान्य घायलों को 25,000 रेलवे की ओर से दिया जाएगा। इलाज का पूरा खर्च हम वहन कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा इलाज का बंदोबस्त किया है।
ये एक आरोप विपक्ष की तरफ से खास तौर पर लगाया जा रहा है कि सरकार आपकी रेल दुर्घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। जब भी इस तरह की दुर्घटना होती है सुरक्षा बेहतर करने की बात की जाती है, लेकिन परिणाम उस तरह से नहीं आ रहे हैं सामने।
देखिए, मैं इसे राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहता हूँ। किसी का आरोप है तो मैं उसका जवाब देने के लिए, मेरी प्राथमिकता इस समय जो घायल है उनके उचित इलाज के लिए प्रबंध करना। मैं चारों जगह गया हूँ जहाँ मरीज भर्ती हैं, मृतकों के परिजनों से मिला हूँ, उनके शव उनके परिवार तक पहुँचे इसके इंतजाम में मैं लगा हूँ, और इसलिए मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, ये सच है कि दुर्घटना हुई है और हम कोशिश करते हैं कि इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जाए और ये रेल फ्रैक्चर कैसे हुआ है या और भी कुछ हो सकता है ये जांच के बाद ही हम बता पाएंगे। इतना निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कठोरतम कार्रवाई हम करेंगे।
ये जो आपने जांच का आदेश दिया है, इसकी रिपोर्ट कब तक आएगी?
इसकी समय सीमा निर्धारित करना उचित नहीं होगा। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी एक स्वायत्त संस्था है, रेल मंत्रालय के अधीन नहीं है, लेकिन निजी तौर पर हम उनसे आग्रह करेंगे शीघ्र रिपोर्ट दें।
रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा से बात कर रहे थे वात्सल्य राय। और आइए आगे बढ़ने से पहले जरा नजर डालते हैं आज के अखबारों पर। मानसी दास आ चुकी हैं अखबारों के साथ। बताइए मानसी, क्या कुछ छपा है अखबारों में आज?
निखिल सर, आज कोई भी अखबार ऐसा नहीं है जिसके पहले पन्ने पर पटना इंदौर एक्सप्रेस हादसे की तस्वीरें और इससे जुड़ी कहानियां ना हो। इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर एक घायल बच्चे की तस्वीर छापी है। हिंदुस्तान टाइम्स, जनसत्ता और दैनिक जागरण ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन की तस्वीर छापी है। दैनिक भास्कर ने इस हादसे से जुड़ी 6 कहानियों को पहले पन्ने पर जगह दी है। इनमें से एक कहानी है 20 साल की रूबी गुप्ता की, जिनकी शादी 10 दिन बाद होने वाली है और वो अपने परिवार के साथ ट्रेन से घर लौट रही थी। हादसे के बाद रूबी अपने टूटे हाथ के साथ अपने पिता को ढूंढती रही। उनके पिता का कोई पता नहीं चल पाया, साथ ही शादी के गहने और कपड़ों का भी कुछ पता नहीं चल पाया। इंडियन एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को पहले पन्ने पर जगह दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नोटबंदी के बाद उन्होंने जो 50 दिन की समय सीमा मांगी है, उसके बाद देश सोने की तरह चमक कर उभरेगा। आगरा में बीजेपी की परिवर्तन रैली में उन्होंने कहा कि इस फैसले पर हल्ला वो मचा रहे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने कहा, आपकी तपस्या बेकार नहीं जाएगी, देश सोने की तरह तप कर बाहर निकलेगा। इसी अखबार ने नोटबंदी से जुड़ी एक और खबर छापी है, जिसके अनुसार मजदूरी की आस में गुड़गांव के लेबर चौक में आने वाले संजीव कुमार को बीते 7 दिनों से कोई काम नहीं मिला है। कभी काम मिलता भी है तो मजदूरी पुराने नोटों में मिलती है, जिससे बैंक खाता या पहचान पत्र ना होने के कारण ना तो वो बैंक में जमा कर सकते हैं ना ही बदलवा सकते हैं। यही हाल यहाँ काम ढूंढने के लिए आने वाले कई और मजदूरों का है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में छपी एक और खबर के मुताबिक मानव संसाधन मंत्रालय ने कथित तौर पर एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसके अंतर्गत खराब प्रदर्शन करने वाले बच्चों को कक्षा 5 तक फेल नहीं किया जाएगा। खबर के अनुसार इस प्रस्ताव को पर दोबारा विचार करने के लिए इसे कानून मंत्रालय के पास भेजा गया है। खबर के अनुसार राज्य सरकार इस बात का फैसला ले सकती है कि कक्षा 6 के बाद बच्चों को फेल किया जाए या नहीं।
बहुत शुक्रिया मानसी अखबारों की इस पूरी समीक्षा के लिए।
हम हैं बेखौफ, हम हैं दमदार,
हम हैं क्रिएटिव,
हम हैं असरदार, हम दिखाते नए रास्ते,
सुनाते कहानियाँ,
हम हैं 100 विमेन।
खास कार्यक्रम और बहस के जरिए सुनाएंगे हम दुनिया भर की औरतों के संघर्ष और सफलता की कहानियाँ।
बीबीसी स्पेशल 100 विमेन।
21 नवंबर सोमवार से हम लाएंगे विशेष साक्षात्कार, रिपोर्ट और बहुत कुछ ऐसा जो आपने इससे पहले देखा सुना नहीं होगा।
तो बहुत जल्द आपको भी ये रिपोर्टें सुनने को मिलेंगी। और अब आइए रुख करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, निखिल रंजन के साथ। आज सोमवार है और संसद के शीत सत्र की शुरुआत नोटबंदी के मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस के साथ हुई थी। गतिरोध की वजह से कामकाज बाधित होता रहा। राज्यसभा में सोमवार को भी यानी कि आज भी नोटबंदी को लेकर चर्चा होनी है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने इसे लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से बात की और सबसे पहले पूछा कि सोमवार से शुरू हो रहे हफ्ते में सरकार का रुख क्या होगा।
जब
पहले दिन सत्र शुरू हुआ तो हमारा पहले दिन से ही एक ही मत था कि आप कोई भी विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग, जिस मुद्दे पे भी चर्चा चाहते हैं, डिबेट चाहते हैं, डिस्कशन चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और जो भी सवाल वो पूछेंगे उस सवाल का, हर सवाल का उनको जवाब मिलेगा। पहले दिन चर्चा शुरू हुई शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के तहत। हमने उसमें बल्कि कहा भी कि वो एक्सटेंडेड शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है जिसमें कि 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे दो दिन चाहे तो वो चर्चा करें। पहले दिन चर्चा हुई, वो चर्चा करने में उन्हें ये महसूस हुआ होगा, हो सकता है कि उनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, उसके आधार पर वो अपनी चर्चा को वो डिमोलिश होता हुआ देखा उन्होंने। इसलिए दूसरे दिन वो अलग तरह के अलग अलग बहाने कि जेपीसी बनाओ, फिर दूसरा प्रधानमंत्री जी आए वो तभी हम चर्चा शुरू करेंगे, तमाम तरह के बहाने करते रहे, उसमें खुद वो अपनी चतुराई के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस गए। हमारी कोशिश है कि मंडे को फिर चर्चा शुरू हो जो अभी बची हुई है और उसमें जो है वो जो भी बोलना चाहते हैं बोले और सरकार उसमें रिप्लाई करेगी।
जिस तरह से ये नोटबंदी का मुद्दा छाया रहा शुरुआती सप्ताह के अंदर, आपको क्या लगता है कि कोई दूसरे मुद्दे पर बातचीत हो पाएगी या ये गतिरोध खत्म होगा जो पहले सप्ताह में रहा?
गतिरोध तो हमने किया नहीं, गतिरोध तो कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ विपक्ष के साथियों ने किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गतिरोध क्यों? गतिरोध तो तब होता है जब सरकार चर्चा के लिए तैयार ना हो, सरकार जो है रिप्लाई देने को तैयार ना हो। सरकार चर्चा के लिए भी तैयार है, जो जवाब सवाल उनके हैं उनका जवाब भी देने को तैयार है। हमारी तो ये थी कि ये जो नोटबंदी का इश्यू है उस पर निश्चित तौर से, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन है, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, तो उसमें कुछ दिक्कतें हो रही हैं, कुछ परेशानियां हो रही हैं लोगों को, उन दिक्कतों और परेशानियों के समाधान की दिशा में विपक्ष और कांग्रेस पार्टी कुछ सुझाव देगी। सुझाव देने के बजाय वो तूतू में ज्यादा उन्होंने अपना समय गवाया।
इस मुद्दे के अलावा सरकार की और दूसरी क्या प्राथमिकताएं होंगी?
देखिए, एक तो लेजिस्लेटिव बिजनेस है अपने आप। लेजिस्लेटिव बिजनेस के अलावा जो भी शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है, कॉलिंग अटेंशन होता है, उसके अलावा किसी और मुद्दे पे चर्चा है तो सरकार उस पर तैयार है। और साथ ही साथ जो है वो लेजिस्लेटिव बिजनेस सरकार के हैं, ये कई महत्वपूर्ण बिल है जो इस सत्र में आने वाले हैं। जीएसटी है वो तो एक महत्वपूर्ण ही है जिसको कि फाइनल जीएसटी काउंसिल और तमाम राज्यों ने उसका अनुमोदन किया है, तो उसका रेटिफिकेशन यहाँ पे होगा। दूसरी चीज ये कि विसिल ब्लोवर है, एंटी करप्शन है, लेबर रिफॉर्म से संबंधित बिल हैं, कई और महत्वपूर्ण बिल हैं।
ये थे मुख्तार अब्बास नकवी और उनसे बात कर रहे थे वात्सल्य राय। इधर नोटबंदी के बाद से पूरा देश उसकी स्थिति से जूझ रहा है, उसका अपने अपने स्तर पर सामना कर रहा है। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी की आगरा में हुई परिवर्तन रैली को रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में नोटबंदी के अपने फैसले की तारीफ की और कहा कि इसका लाभ देश की भावी पीढ़ी को मिलेगा। पूरी जानकारी के साथ समीर आत्मज मिश्र।
आगरा में बीजेपी की परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री शामिल हुए और उनके भाषण से ये भी साफ हो गया कि विधानसभा के आगामी चुनाव में वो नोटबंदी के अपने फैसले का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश समेत देश के तमाम हिस्सों में बैंकों के सामने लगी लाइनें और वहां हो रही झड़पों की खबरों के बावजूद प्रधानमंत्री ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि जनता इस फैसले का स्वागत कर रही है।
देश को भ्रष्टाचारियों से मुक्त कराने के लिए, देश को काले बाजारियों से मुक्त कराने के लिए, देश को काले धन से मुक्त कराने के लिए मैंने जो बीड़ा उठाया है उसको सबसे ज्यादा आशीर्वाद गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों ने दिए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके सपने सच होके रहेंगे।
नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने ये कदम गरीब और आम लोगों के हित में उठाया है। उन्होंने दावा किया कि महज 2 हफ्तों के भीतर अब तक 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम लोगों ने बैंकों में जमा कराई है। नोटबंदी के फैसले को लेकर उन्होंने काफी देर तक चर्चा की और ये भी कहा कि दूसरी पार्टियों की इस फैसले से नींद उड़ी हुई है।
आपको एमएलए बनना है, इतनी नोटे लाओ तब एमएलए बनोगे। हम नोटे भरपर करके रखी थी, क्या हुआ उन नोटों का? ये नोटे किसकी थी? गरीब और ईमानदार आदमी की थी कि नहीं? भाइयों, ये खेल बंद होना चाहिए देश में। मैंने कोई निर्णय किसी को परेशान करने के लिए नहीं किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले की लगातार समीक्षा हो रही है और लोगों की दिक्कतों को देखते हुए इसमें सुधार भी किए जाते रहेंगे। परिवर्तन रैली में शामिल होने से पहले नरेंद्र मोदी ने मीना बाजार मैदान पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की। योजना के तहत 7 राज्यों से आए करीब 44 लोगों को आवास की चाबी सौंपी गई। योजना का मकसद 2022 तक गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को घर मुहैया कराना है।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, और आज सोमवार है और आप सबको इंतजार है पाकिस्तान के पाकिस्तान डायरी का, जिसे भेजते हैं वसतुल्लाह खान। तो आइए सुनते हैं।
सेहत और सफाई पे काम करने वाली एक एनजीओ वाटर एड ने पिछले सप्ताह जो रिपोर्ट जारी की उसके अनुसार इस समय इस दुनिया के 700 मिलियन लोगों के लिए ऐसा साफ सुथरा शौचालय एक सपना है जिसके कमोड पे बैठ के वो मेरी तरह अखबार पढ़ सकें। इस विश्व में एक बाइज्जत शौचालय से वंचित सबसे ज़्यादा लोग जिन टॉप 10 देशों में सुबह ही सुबह सबसे पहले खुद को हल्का करने के बारे में सोचते हैं, उनमें भारत तो खैर चोटी पर है ही, उससे ज़रा नीचे पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हैं। और अच्छी खबर यह है कि हम तीनों देश अकेले नहीं, हमारे साथ चीन, रूस, ब्राज़ील और इंडोनेशिया जैसे देश भी आगे पीछे जुड़े हुए हैं। कैसी आश्चर्यजनक बात है कि सब सरकारों को ये परेशानी तो रहती है कि जनता का पेट भरा रहना चाहिए, मगर पेट बाइज्जत तरीके से गड़गड़ाहट से खाली कैसे किया जाए ये जनता जाने। ज़रा सोचिए कि कैसा मंजर हो कि एक व्यक्ति भारत या पाकिस्तान में किसी झाड़ी में छुप के या रेलवे ट्रैक पे मुंह फेरा के इधर उधर देखते हुए जोर लगा रहा हो और ऊपर से पृथ्वी या गौरी मिसाइल गुजर जाए और वो उठ के खुशी से नारे लगाना शुरू कर दे। मेरी तो समझ में नहीं आता कि रोटी, कपड़े, मकान, सेहत और रोज़गार के साथ टॉयलेट की ज़रूरत को भी मूलभूत अधिकारों की सूची में कैसे शामिल किया जाए, ताकि हम कम से कम ये कहने जोगे हो सकें कि इंसान और घोड़े में बुनियादी फ़र्क ये है कि घोड़े के पास टॉयलेट नहीं होता। क्या भुना मजाक है कि इस दुनिया में हर वर्ष 3.5 लाख बच्चे सिर्फ इसलिए दस्त और पेट की दूसरी बीमारियों से मर जाते हैं कि उनकी किस्मत में एक साफ़ सुथरा शौचालय ही नहीं जहां वो पेट हल्का करने के बाद ढंग से हाथ धो सकें। कहने को भारत और पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में नाम को पब्लिक टॉयलेट्स भी थोड़े बहुत बने हुए हैं, मगर मैंने तो आज तक किसी महिला को इनमें आते जाते नहीं देखा। ज़रा सोचिए, आपको किसी वजह से 5-6 घंटे घर से बाहर रहना पड़ जाए और आप महिला भी हों तो आपके दिल, दिमाग और बदन की क्या हालत होगी। इस दुनिया में करोड़ों महिलाएं हर रोज़ इसी अत्याचार से गुजरती हैं और पुरुषों की दुनिया को एहसास तक नहीं होता। अगर प्रगति इसे कहते हैं कि किस देश के पास कितने परमाणु बम और मिसाइल हैं, तो ये इसलिए है क्योंकि जो लोग ये सब कुछ बना रहे हैं और उनके बारे में निर्णय ले रहे हैं, उन्हें एक साफ़ सुथरे टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध है। ज़रा तसव्वुर करें कि अगर मोदी जी या नवाज शरीफ किसी ऐसी जगह 24 घंटे के लिए फंस जाएं जहां दूर दूर तक सिवाय खेतों के कोई टॉयलेट ना हो और कोई पत्रकार उनके साथ साथ दौड़ता हुआ पूछ ले कि श्रीमान जी, टॉयलेट को डालिए नर्क में, ये बताइए कि काला धन कैसे ख़त्म होगा और कश्मीर की समस्या का आपके नज़दीक क्या समाधान है, सोचिए कैसा करारा जवाब मिलेगा।
ये थी वसतुल्लाह खां की डायरी, और आइए अब कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर है, तो सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। रविवार तड़के कानपुर से 60 किलोमीटर दूर हुए रेल हादसे में मरने वालों की संख्या 128 तक पहुंच गई है। आशंका जताई जा रही है कि क्षतिग्रस्त डिब्बों में अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं। जर्मन चांसलर अंगेला मर्केल चौथी बार चांसलर बनने के लिए अगले साल चुनावी मैदान में उतरेंगी। ब्रिटिश टेनिस स्टार एंडी मरे ने ATP वर्ल्ड टूर का फाइनल जीतकर टेनिस की नंबर एक रैंकिंग पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। ईरान के परमाणु प्राधिकरण का कहना है कि उन्होंने ओमान के लिए अतिरिक्त भारी जल से भरा जहाज भेजा है जिसका इस्तेमाल प्लूटोनियम के उत्पादन में किया जा सकता है। पेरू में चल रही APEC देशों के सम्मेलन के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। व्हाइट हाउस ने बताया कि ओबामा ने पुतिन से अपील की कि वे सीरिया में जारी हिंसा को रोकने की कोशिश करें। हेती के राष्ट्रपति चुनावों में मतदान खत्म होने में कुछ ही समय बाकी है। चिंता जताई जा रही है कि पिछले महीने आए विनाशकारी तूफान के कारण भारी मात्रा में लोग मतदान करने नहीं आ सकेंगे। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रही थी मानसी दास और आज स्टूडियो संभाल रहे हैं शाकिर आलम। आपसे एक घंटे बाद फिर मुलाकात होगी। निखिल रंजन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।